ओम शांति। एक व्यक्ति को बार बार सर्दी खांसी होती रहती थी और उसकी सर्दी खांसी कभी ठीक ही नहीं होती थी, और सर्दी खांसी कभी ठीक भी हो जाती तो तुरंत लौट कर आ जाती। कई सारे अस्पतालों में दिखाया, बड़े डॉक्टरों की दवाई ली, परंतु उसकी सर्दी खांसी कभी ठीक ही नहीं होती थी। तो बहुत परेशान हुआ, निराश हुआ, और एक दिन उसे एक नीम हकीम, झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं, वो मिला। तो उसने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे तुरंत ठीक कर सकता हूँ, इलाज बहुत ही आसान है। वो कहता है क्या? तो वो नीम हकीम उससे कहता है कि सर्दी की आधी रात में किसी एक झील के पास जाओ, उस झील में स्नान करो, और वहां पर खड़े हो जाओ स्नान करने के बाद, और ठंडी ठंडी हवाओं का सेवन करो, तो तुम्हारी जो सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। वो कहता है आप होश में तो है, क्या ये कोई इलाज है सर्दी खांसी ठीक करने का? आधी रात को, वो भी ठंडी हवाएं और वो झील और उसमें स्नान और उसके बाद वहां खड़े हो जाना, तो क्या इससे सर्दी ठीक हो जाएगी? वो नीम हकीम कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि इससे सर्दी गर्मी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, इससे तो तुमको निमोनिया हो जाएगा, और फिर उस निमोनिया का इलाज मैं जानता हूं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने सुने हैं, परंतु कुछ ऐसे हाथों में चले गए हैं वो शब्द कि वो जटिल बन गए हैं, जैसे कि ज्ञान, जैसे कि ब्रह्मचर्य, जैसे कि तपश्चर्या और तपस्या, जैसे कि त्याग। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो नए नहीं है, परंतु ऐसे ऐसों के हाथों में गए हैं कि जैसे ही तपस्या शब्द सामने आता है तो कौन सी आकृति आंखों के सामने आती है? कौन सी आकृतियां सामने आती है? वैराग्य शब्द सामने ही आता है, कुछ आकृतियां उभरती है आंखों के सामने, कौन सी? लंबे लंबे बाल, जटा जूट धारी, और शरीर पर राख विभूति भभूति लगाए हुए अघोरी, और तपस्या शब्द सामने आते कौन सी आकृतियां सामने आती है? एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, और शंकर, और गुफाओं में बैठे हुए हैं, कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, और आत्मपीड़न, आत्म उत्पीड़न। हिंसाएं दो प्रकार की है, एक हिंसा है दूसरों पर हिंसा करना। दूसरों पर हिंसा करो तो वो व्यक्ति भाग सकता है, दूसरे पर हिंसा करो तो व्यक्ति गिड़गिड़ाकर चरणों में गिर सकता है, चापलूसी कर सकता है, रिश्वत दे सकता है, या और कुछ कर सकता है। बचाएगा अपने आप को, भागेगा, या और कुछ करेगा यदि किसी और पर हिंसा की जाए तो। परंतु यदि कोई स्वयं पर हिंसा करे तो उसे बचाने का क्या मार्ग है? यदि कोई अपने ही देह को पीड़ा दे तो उसे कैसे बचाया जाए? तो तपस्या शब्द कहते ही और कौन सी आकृतियां सामने आती है? कंदमूल फल, और क्या संसार में दुख कम है? जो भगवान को पाने का विचार आते ही दुखों का अंबार लगता है आंखों के सामने, ये सब करना पड़ेगा। कांटे तो इधर भी इतने हैं, परंतु कांटों की सैया पर सो जाना, इसे तपस्या समझा गया है संसार में। अग्नि पर चलना, प्यासे रहना, भूखा रहना, इसे तपस्या कहा है संसार में। तो ये ऐसे शब्द है जो है तो सहज सरल परंतु गलत हाथों में पड़े हैं। व्याख्याकार असंख्य है, असंख्य व्याख्याकारों ने असंख्य इसके ऊपर टीका की है, टिप्पणियां की है, व्याख्या दी है। और मनुष्य बेचारा, एक संसारी मनुष्य ऐसी व्याख्या सुन सुनकर अपने मन में इन सारे शब्दों के प्रति एक भय लिए हुए है, घृणा भी लिए हुए है। वैराग शब्द कहते ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके कहते ही वो सारा कुछ उभरता है आंखों के सामने। तो और एक बात याद आ रही है, आज तक कथाकारों ने, व्याख्याकारों ने, शास्त्रकारों ने, तपस्वी जो भी तथाकथित महात्माओं ने एक साधारण मनुष्य के मन में इन सब बातों के बारे में इतना कुछ भर दिया है कि भयभीत है वो इन शब्दों से ही। हम किसी आईटी डिपार्टमेंट में जाकर या कोई कॉलेज में जाकर अगर इस टॉपिक पर चर्चा करें जीवन में तपस्या, तो कितने लोग आएंगे वहां? कॉलेज स्टूडेंट के सामने वैराग विषय पर चर्चा की जा सकती है क्या? या जीवन में ब्रह्मचर्य? तो ऐसे ही एक नेता एक बार एक गांव में आता है, तो देखता है कोई भी नहीं आया है, केवल एक गरीब सा व्यक्ति बैठा हुआ है, और उससे पूछता है अब क्या किया जाए, कोई भी नहीं है भाषण सुनने के लिए। वो कहता है मैं एक गरीब किसान हूं, और जब भी मैं चारा देने जाता हूं गायों को और 20 गायों की जगह एक ही गाय होती है, तो मैं उस गाय को चारा खिलाकर ही लौटता हूं। वो नेता बहुत प्रभावित होता है इस उत्तर को सुनकर, और वो भाषण कहता है कि भाषण तो देना ही है, तुम हो मैं हूं बस, और एक घंटा अपना धुआंधार भाषण देता है, और फिर उस गरीब से पूछता है कहो कैसी रही। वो कहता है मैं एक गरीब किसान हूं, और जब भी मैं चारा देने जाता हूं और 20 गाय की जगह एक ही गाय होती है, तो मैं उस एक गाय को एक ही गाय का चारा खिलाता हूं, ना कि 20 गायों का। पर आपने तो 20 गाय का चारा मुझे अकेले को खिला दिया है, भागने का कोई उपाय नहीं था। यही मनुष्य की गति हुई है। एक ही गीता है, पर कितनों ने टीका की है गीता पर, कितने सारे उसके टीका टिप्पणियां है, कितनी किताबें हैं भगवत गीता पर। माधवाचार्य की अलग टीका, शंकराचार्य की अलग टीका, रामानुजाचार्य की अलग टीका, श्रीधर स्वामी की अलग टीका, एक तरफ ज्ञानेश्वरी, हजारों टीकाएं है। कोई अद्वैत के दृष्टिकोण से, कोई द्वैत की दृष्टिकोण से, कोई विशिष्ट अद्वैत की दृष्टिकोण से, कोई ज्ञान की दृष्टिकोण से, कोई भक्ति की दृष्टिकोण से, कोई वैराग की दृष्टिकोण से, कोई अलग 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 कर्म की दृष्टिकोण से, इतनी सारी बातें हैं। तो कहने का भाव, ज्ञान, योग, तपस्या, तपश्चर्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, ये सारे शब्द हैं। सारे शब्द सुनते ही भय लगता है। और ये जो मुरली है संडे की, ये भी इसी पर है। क्या टॉपिक है? त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा तो भी ठीक है, सेवा संसार के लोग स्वीकार कर लेंगे सेवा शब्द को, सेवा पर भाषण दिया जा सकता है कॉलेजों में भी, पर त्याग और तपस्या ये जरा मुश्किल है। कठिन टॉपिक से। तो कौन सा दिन है आज? बाबा ने क्या कहा? स्मृति दिवस। स्मृति दिवस, स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस। 10 नाम बताओ स्मृति दिवस के। यहां से चालू सुशील भाई। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस। मलेश भाई, बाप समान बनने का दिवस। 92 की मुरली। थर्ड, सब कुछ विल करने का दिवस। सब कुछ विल करने का दिवस एक 95 की मुरली है। और बोला ऐसा बाबा ने बोला है। वैसे तो बहुत हो सकते पर जो मुरलिया चली है ईयर वाइज वो बताओ बच्चे आंसू बहाते हैं और ब्रह्मा बाप उन आंसुओं को अपने दिल में समा लेते हैं। इसी मुरली में एक जगह है, बच्चे आंसू बहाते हैं मोती बनाकर अपने दिल में समा लेते हैं। और कौन सा दिवस है? फॉलो फादर करने का दिवस है। स्नेह दिवस 85, स्नेह का 85 2000, स्नेह दिवस, स्नेह संपन्न दिवस। और सहज वरदान प्राप्त करने का दिवस, उलाना देने का दिवस। परंतु मुरली में एक जगह कहा है कि बाप दादा जानते थे कि अव्यक्त पार्ट चलेगा, तब भी जानते थे कि अव्यक्त पार्ट चलेगा। बाबा कैसे सीक्रेट्स को सीक्रेट रख देता है, टाइम आने पर ही बताता है। कितना बिल्कुल उतावलापन नहीं बता दू फटाफट, कितना धीरज है, धैर्य का सागर है वो। और कौन सा दिवस है ये? अनुभवों का दिवस, संपूर्ण संपन्नता का दिवस। 99 है शायद, संपन्नता का दिवस, फरिश्ता बनने का दिवस, और बाप समान बनने का दिवस। और तो दिवस का नाम बताओ जरूर ज्ञान करने का दिवस, और ताजपोशी का दिवस, तिलक प्राप्त करने का दिवस। फॉलो दस, फॉलो सन शोस, फॉलो सन शोस फादर का दिवस, फॉलो फादर करने का दिवस, और यूनिवर्सल पीस। क्या कहा जाता है इसे? यूनिवर्सल पीस डे, विश्व शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे। तो आज कौन सा दिवस है? स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, बाप के अव्यक्त होने का दिवस, अव्यक्ति दिवस, संपन्नता का दिवस, संपूर्णता का दिवस, विल करने का दिवस। तो इस दिन में बाबा क्या कर रहे हैं? विल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विल। विल अर्थात ध्रुव भाई, विल अर्थात क्या? टेस्टामेंट, विल, वसीयतनामा, वसीयत, मृत्यु पत्र, चल अचल संपत्ति को किसी के नाम किसी को उत्तराधिकारी घोषित करना। तो ये संसार में अनेक प्रकार की विल है, स्टैट्यूटरी विल, डेथ विल, डेड बेड विल, फोन विल, वीडियो विल, विल, अलग अलग प्रकार की विल है, बहुत सारी विल, लंबी विल, सिंपल विल, हैंड रिटन विल, विल विल विल। तो ये संसार में अनेक प्रकार की विल है। तो यहाँ पर भी ये कौन सी विल है? ये अलौकिक विल है, ये परमात्मा विल है, ये अलौकिक विल, परमात्मा विल। ऐसी विल और कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि इस विल में क्या कह रहे हैं? सर्वशक्तियों की विल है ये, सर्वशक्तियां, एक्स्ट्रा पावर्स, परमात्मा द्वारा सारी पावर्स मिलने की, का यह दिवस है, तो ब्रह्मा भी निमित्त बनाया, बाप ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया और ब्रह्मा ने वरदान दिया, कौन सा? निमित्त भव। कितना ऊंचा वरदान है ये कि तुम निमित्त हो इस संसार के कल्याण के। अब तो विल, अलौकिक विल, परमात्म विल, ऐसी ये विल है। परमात्म देन है और परमात्म क्या है? वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है, सहज होता है। तो सूक्ष्म वतन में जाना बाप दादा के सम्मुख और वरदान लेना, किस चीज का? सर्व शक्तियों का, सर्व पावर्स का। सर्व पावर्स ले लेना वरदान के रूप में, देन के रूप में। प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। और फिर नीचे आकर विश्व की सभी आत्माओं को दे देना, बांटना, यह अभ्यास करना है। तो पहली बात तो बाबा ने विल की बताई, स्मृति दिवस। जैसे उसने विल कर दी, वैसे हमें भी विल करना है। फिर विल का ही अर्थ देना भी, जैसे कि उसने हमें दिया और हमें ये शक्तियां क्या करना है? संसार की आत्माओं को ट्रांसफर कर देना है। संसार की आत्माओं को शक्तियों की आवश्यकता है, ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो पता है, परंतु बल नहीं है धारण करने का। ये इतनी ऊंची धारणाएं हैं, कैसे संसार दुखों की घटनाओं में डूबा हुआ। शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, दुखों की घटनाएं। प्रतिपल दुख है, जहां देखो वहां दुख का मंजर है। ऐसे दुखों में डूबा हुआ संसार क्या इन शब्दों को समझ पाएगा? शक्तियां, ईश्वरीय देन, ब्रह्मचर्य, वैराग, तपस्या, संपूर्णता, मुश्किल है। उन्हें शक्ति चाहिए, तो संसार की आत्माओं को शक्तियां देना है। चीख रही है, चिल्ला रही है उनकी वो चित्कार, उनकी वो गुहार, हे इष्ट देव, पुकार रही है ना आत्माएं। तो हमें क्या करना है केशव भाई? क्या करना है आत्माओं को? केवल सुनना है या और भी कुछ करना है? रिस्पॉन्ड करना है। अगर नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगी? अलवेली हो जाएगी आत्माएं। नहीं करोगे तो चुप हो जाएगी, चिल्लाएगी 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 और चुप हो जाएगी। तो हम इष्ट देव है। तो पहली बात जो मुरली में कही है वो है विल के बारे में। दूसरी बात, वतन में दो प्रकार की आत्माएं। एक तो वह आत्माएं आदि रतन, जो कि स्थापना के निमित्त है सभी दादियां। दूसरी सेवा की निमित्त आत्माएं, एक निमित्त दूसरे उनके साथी। उनमें दो विशेषताएं देखी बाबा ने, कौन सी? एक तो हम सब एक है, हम सब एक है। और दूसरी, एक ने कहा और दूसरे ने माना, क्या, क्यों, कैसे? नहीं, हाँ जी, इस यूनिटी ने ही इस यज्ञ को इतना बड़ा कर दिया, इतना विस्तार हुआ, इतनी वृद्धि हुई, क्योंकि इंटरनल यूनिटी होती है। और कोई भी संगठन यदि टूटता है तो उसका कारण कभी भी बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होता है, अंतरकलह। आज तक संसार में जितने आध्यात्मिक संगठन टूटे हैं, किसी बाहर वालों की इतनी ताकत नहीं थी उसे तोड़ सके। जो भी धर्म टूटे हैं, जो भी धर्मों का में गिरावट आई है, धर्मों का पतन हुआ है, क्यों हुआ वो विघटन? क्यों हुआ? क्यों विभक्त हुए सारे धर्म? क्योंकि अंतर कलह था। वैसे ही इस यज्ञ को बाहर के किसी शत्रु की का भय नहीं है। भय है पर किसका है? अंतर कलह का। अंतर कलह, अंतर द्वंद। यदि अंदर ही विघटन हो गया तो फिर यूनिटी ना रहे, एकता ना रहे, और इस यज्ञ का जो फाउंडेशन हुआ वो किस आधार से हुआ? एकता के आधार से। एक मनोचिकित्सक कभी अफ्रीका की जंगलों में किसी गांव में पहुंचा, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक, और वहां के बच्चों को उसने देखा, आदिवासी बच्चे खेल रहे थे। उसने कहा कि मैं एक प्रयोग करता हूं इनके ऊपर, और उन सारे आदिवासी बच्चों को एकत्रित किया, लगभग 100 होंगे, और उनसे कहा कि ये पेड़ है, इस पेड़ के पास मैं ये थालियां रख रहा हूं, इसमें बहुत सारी टॉफीज, कैंडीज, स्वीट्स, आप लोगों को भागना है, रेस करनी है मैराथन 100 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी से, और जो भी बच्चा पहला आएगा उसे ये सब कुछ दिया जाएगा, केवल पहले वालों को, केवल पहला जो आएगा उसी को, जितनी थालियां रखी है उन थालों में जितना कुछ है वो सब उसे मिलेगा। और रेस चालू होती है रेडी स्टडी को, और वो सारे बच्चे जो होते हैं अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, सारे के सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और भागना चालू करते हैं। वो मनोचिकित्सक आश्चर्य होकर देखते रहता है, और वो सब एक साथ पहुंचते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, और वो जितनी थालियां होती है उसका जो जो सामान होता है खाने का सब आपस में बांट के खाते हैं। तो उसको लगता है ये क्या हुआ, उसने कभी सोचा नहीं था ये आदिवासी लोग, और वो आया है बड़े शहर से, इनको क्या पता धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें या एकता की बातें। वो उनसे पूछता है ये आपने क्यों किया, तो वो लोग अपनी भाषा में एक शब्द कहते हैं उबुंटू उबुंटू उबुंटू, ये उनका आदिवासी शब्द है, उसका अर्थ होता है कि वी आर, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम सब हैं, मैं हूं क्यों हूं क्योंकि हम सब हैं, यदि हम सब ना होते तो मैं भी नहीं होता, मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, किसी और को दुख देके मैं सुखी नहीं हो सकता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके सुख में ही मेरा सुख है। वो आदिवासी लड़के कितनी ऊंची बातें, कितने ऊंचे सिद्धांत है, जो धर्म को नहीं जानते, अध्यात्म को नहीं जानते, ना ही किसी फिलॉसफी को जानते हैं। तो यज्ञ की एक नींव क्या रही? एकता। चाहे वो मधुबन में हो, चाहे वो सेवा केंद्र में हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, कहीं सर्विस का कोई फील्ड हो, वहां पर विघटन ना हो, वहां पर टूटे ना, यदि उसमें निहित स्वार्थ है कहीं, तो ऐसे समय पर पीछे हट जाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ का कोई नुकसान ना हो, हम यदि पीछे हट गए तो चलेंगे, परंतु काफिला आगे जाए। तो दो बातें, दो बच्चे और दो विशेषताएं। कौन सी दो विशेषताएं? एकता, और सबसे बड़ी एकता जो है वो है आंतरिक एकता, हमारी स्वयं स्वयं के साथ एकता। बाहर की एकता तो केवल झलक मात्र है, हमारे संकल्पों की, भावनाओं की, बोल की, कर्म की एकता, थॉट वर्ड और डीड्स की अलाइनमेंट। ऐसे नहीं कि संकल्प श्रेष्ठ है परंतु बोल साधारण है, बोल श्रेष्ठ है परंतु कर्म निकृष्ट है, ये तीनों ही अलग अलग लेवल पर ऑपरेट ना करें। कर्म एक तरफ, बोल एक तरफ, संकल्प एक तरफ, भावनाएं पीछे खींच रही है अतीत में, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, चित्त भटक रहा है। ऐसा ना हो, कभी अति उतावलापन ये ना हो। भक्ति मार्ग में साधना की तीन गति बताई गई है, एक पक्षी गति, एक वानर गति, एक पिपीलिका गति। पिपीलिका अर्थात चिड़िया, चींटी। तो पहली पक्षी अर्थात पक्षी विहंग, पक्षी गति अर्थात गति, अर्थात जैसे पक्षी होता है इतना उतावला होता है, उतावला जाता है और फल को पकड़ता है और चोच मारता है, फल नीचे गिरता है, उसके हाथ से चला गया, उसको मिला ही नहीं। ये गति ना हो, पक्षी गति ना हो साधना मार्ग में, उतावलापन कि अति इंद्रिय सुख चाहिए और चाहे गए लिया और छूटा, ये उतावलापन नहीं। दूसरा है वानर गति, वानर गति इधर से उधर, उधर से उधर, इस जाली से उस जाली, पकड़ा फल को, पकड़ तो लिया परंतु इधर से उधर कूदते हुए गिर गया। तीसरा है पिपीलिका गति, पिपीलिका अर्थात चींटी, ये गति होनी चाहिए, धीरे 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 गई खाद्य पदार्थ के पास, पकड़ा खाया और थोड़ा सा लेके लेके धीरे 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 गई और एकांत में बैठ के उसका फिर सेवन कर रही है। साधक की पिपीलिका गति हो, चींटी वाली, सारा माल अंदर में समा लिया और फिर उसको धीरे धीरे उसका सेवन कर रही है। वो चंचलता नहीं है, वो राजस वाला वो गुण नहीं है, धीरे 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 धीरे। अध्यात्म का ये मार्ग भी साधना आंतरिक है, ऐसी धीरे 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 होती रहे अंदर ही अंदर। तो वानर गति ना हो और ना हो पक्षी गति, कौन सी गति हो, पिपलिका गति। पर सेवा में पिपलिका गति नहीं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कमाल। क्या कहा पंडस, पाप की तो कमाल है ही परंतु बच्चों की भी कमाल, बाप की तो है ही परंतु बच्चों की भी कमाल। बाप को क्या कर रहे, स्नेह की मालाएं पहना रहे। इसमें दो तीन अच्छी बातें, बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है डबल विदेशियों के लिए कि तब भी बाप को पता था कि अव्यक्त पाठ चलेगा, ब्रह्मा आप लोगों के लिए, ब्रह्मा ने आप लोगों के लिए शरीर छोड़ा। और एक अंतिम प्रश्न है वहां पर कि अव्यक्त पालना के क्या हम पात्र हैं, प्रश्न पूछा है एक डबल विदेशियों को, प्रश्न कहो या उद्गारवाचक, कि अव्यक्त पालना के पात्र हैं क्या, मैं अव्यक्त पालना का पात्र हूं, जो अव्यक्त पालना मिल रही है क्या हम उसके पात्र हैं या नहीं है। ध्रुव क्या कहोगे, है परंतु क्या वो पात्रता है। यदि पात्र में जल भर जाए उसमें तीन चीजें चाहिए, या फिर जल न भरे उसके तीन कारण है। एक तो पात्र यदि छेद वाला है तो उसमें जल नहीं भरेगा, बारिश हो रही है परंतु उसमें छेद है तो जल नहीं भरेगा। अव्यक्त पालना तो मिल रही है, वर्षा तो बरस रही है, वो सावन तो है अव्यक्त पालना का, पर हमारे ही पात्र में छेद है, व्यर्थ विकर्म विकार नकारात्मक भाव, तो वो बह जाएगा। दूसरा, यदि रखा तो बाहर ही है, वर्षा हो रही है परंतु उल्टा है तो कैसे उसमें कुछ भरेगा, तो भी नहीं भर सकता। तीसरा, उसके अंदर कीचड़ा भरा है, सीधा रखा हुआ है, कोई छेद नहीं है परंतु पहले ही कीचड़ा है, तो वो पानी कैसे भरेगा उसमें, वो पानी भी गंदा हो जाएगा। क्या मैं परमात्मा पालना का पात्र हूं, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले पात्र सीधा, दूसरा कोई छेद नहीं, तीसरा कीचड़ा नहीं होना चाहिए बुद्धि में, बुद्धि स्वच्छ हो, स्वच्छ निर्मल स्पष्ट प्रांचल, ऐसी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहर सकता है। नहीं तो यह ज्ञान ठहर भी नहीं सकता, ना ही इसका चिंतन हो सकता है। यह ज्ञान का चिंतन कोई साधारण चिंतन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स या कोई संसार का कोई मशीन का चिंतन नहीं है, या कोई बीमारी का चिंतन नहीं है जिसकी इलाज ढूंढ लिया जाए, ये वो नहीं है, ये सूक्ष्म चिंतन है। जितना ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है जिसने, जहां ब्रह्मचर्य की ओजस शक्ति बह रही है अंदर, तभी इस ज्ञान का वह सूक्ष्म चिंतन हो सकता है और तभी वह सूक्ष्म चिंतन बल का रूप धारण कर सकता है। साधना मार्ग में दो प्रकार के सिद्ध है, एक सिद्ध है कृपा सिद्ध और दूसरा सिद्ध है साधना सिद्ध। एक होता है साधना सिद्ध, बहुत जैसे खेत है, वहां पर बहुत मेहनत करता है, नहर काटता है और पानी खींच खींच के लाता है सींचने के लिए उस खेती को, तो ये सबसे पहले साधना के मार्ग से सिद्ध होगा व्यक्ति। दूसरा है कृपा सिद्ध, जहां पर अपने आप वर्षा आ रही है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कहीं से पानी उठा उठा के नहीं ला रहा है, तो संगम पर परमात्मा देन परमात्मा कृपा, हम सभी कृपा सिद्ध है, अपने आप वर्षा हो रही है, फिर भी यदि पात्र उल्टा है, उसमें गंदा है, उसमें वह निर्मलता पावनता नहीं, तो भरेगा नहीं। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात त्याग, गलत हाथों में पड़े हैं शब्द ये सारे, इसके लिए त्याग अर्थात संसार में क्या समझा जाता है, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो वो भी छोड़ो, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, छोड़ दिया जाता है, परंतु क्या अर्थ छोड़ो नहीं है। बाबा ने क्या कहा ड्रामा में, क्या नूंद है, ब्रह्मा का त्याग और बच्चों का भाग्य ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कभी कहा है मधुबन निवासियों को कोई देखे तो ये ना दिखाई दे कि ये बहुत त्यागी है, चेहरे से त्याग ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे, भाग्य दिखाई दे, ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा, इसको छोड़ो तो वो ये त्याग नहीं है। त्याग अर्थात इतना मिल गया है कि वो छूट गया है, छोड़ा नहीं है, छूट गया अपने आप, उसकी जिसकी व्यर्थता समझ गई, जैसे जैसे ही जो भी ब्राह्मण ज्ञान में आते हैं तो बाहर का खाना स्वतः ही छूट जाता है, क्यों क्यों छूट गया, अच्छी अच्छी जिलेबी बन रही है बाहर, रास्ते से जाते हुए लगता है कि थोड़ी मिल जाए, कोई देख तो नहीं रहा है, खा लू, क्यों इतने पक्के कैसे हो गए अचानक से चलो यहाँ जो नहीं रहते बाहर भी रहने वाले हैं, गरीब घर वाले हैं, तो भी वो बाहर का उनको क्यों इच्छा नहीं, खत्म कैसे हो गई ये इच्छा, वो रावण के किचन में बन रहा है, रावण किचन एंड राम्स किचन, दो प्रकार के किचन है तो राम के किचन में खाने वाले रावण के किचन में नहीं खा सकते। एकदम प्रकाश आ गया बुद्धि में और झट से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, चाहे कितना भी कुछ हो, भूखा रहेंगे पर खाएंगे नहीं, इतनी दृढ़ता कैसे आ गई अचानक से ज्ञान में आते ही, क्या वैसी ही दृढ़ता विकारों के प्रति भी आ गई, व्यर्थ के प्रति भी आ गई, वो तो नहीं आई, क्यों, शायद संपूर्ण समझ नहीं है, वो त्याग कैसे हो गया, यदि हमारी कोई बहुत ही महिमा करे अरे तुम बाहर का नहीं खाते तो हमको कुछ ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है, जब व्यर्थता का समझ में आ जाए तो चीजें स्वतः ही छूट जाती है। त्याग किसका त्याग, कैसा त्याग, वो तो छूटा हुआ है, जो छूट गया उसका क्या, जो व्यर्थ है, कल भी कहा था घर में किसी के बहुत सारा किचड़ा है और उसने अपना घर का किचड़ा बाहर फेंक दिया तो क्या उसकी उसका सम्मान सत्कार होता है कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो व्यर्थ ही था जो किचड़ा ही था उसी को फेंक दिया ना, तो त्याग अर्थात ये छोड़ू वो छोड़ू नहीं, स्वतः ही छूट जाए, व्यर्थता समझ में आ गई छूट गया। हमारे पास ओपीडी में कितने सारे बीके भाई बहने आते हैं, भाई बहुत सारे जो 10 साल से ज्ञान में है 50 साल से ज्ञान में है, पर क्योंकि हमको हिस्ट्री लेना पड़ता है तो एक प्रश्न तो पूछना ही पड़ता है कि बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू, वो कहते हैं अभी 10 साल से 20 साल से 30 साल से कुछ नहीं, परंतु इसके पहले तो इतना पीते थे कि बात मत पूछो, बहुत ज्यादा 30-30, 40-40 सिगरेट पर डे हर दिन, और कैसे छोड़ा, अचानक से एक दिन जैसे ज्ञान मिला ढक से छूट गया, और दूसरे लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं जो छोड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं अब तक, पर छूटता ही नहीं। छूटते हैं 10 दिन 15 दिन, फिर से चालू, फिर से कुछ होता है जीवन में, कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर से चालू कर देते। ये कैसे हो गया? त्याग। त्याग अर्थात जब पता चल जाए कि ये व्यर्थ है तो स्वतः ही छूट जाता है, करना नहीं पड़ता है उसको। जैसे पत्ते सूखे सूख जाते हैं, स्वतः गिर जाते हैं। झाड़ को भी नहीं पता वो गिरे, पत्तों को भी नहीं पता हम गिरे। बुराइयां, विकर्म, विकार, कुसंस्कार, व्यर्थ, निगेटिव, वो भी ऐसा ही गिर जाए। वो गिरेगा तब जब महान का पता चलेगा, वो अवेयरनेस कितनी ज्यादा है हमें। तो त्याग, तो क्या कहा त्याग के लिए बाबा ने? ब्रह्मा का त्याग। त्याग अर्थात परिभाषा दी है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ देना। ब्रह्मा ने त्याग किया। साधन थे, किस किस चीजों का त्याग किया? 10 बातें बताओ। स्थान, स्थान का एक वो भी है कि एक व्यक्ति को अपने स्थान से लगा होता है, कराची कहो या सिंध हैदराबाद कहो, अपने घर से, स्थान से एक प्राकृतिक लगाव होता है, छोड़ना नहीं चाहता है। कोई कहे कमरा बदलो तो बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, वो भी स्थान से कोई लगाव नहीं, आज इधर कल उधर। और पोजीशन, हाँ कि मैं हेड हूं। और इस भाव का त्याग, समय, अपना समय, अपने नींद का, आराम का समय किसी को देना, ये तो सबसे बड़ा त्याग है। और संपत्ति, अपने धन, स्थूल त्याग और सूक्ष्म त्याग दो प्रकार होते हैं। स्थूल तो एकदम से जब पता चला रत्नों के बारे में तो वो स्वतः ही छूट गया, वो मिट्टी लगने लगे, वो तो अति सूक्ष्म त्याग है, मैं का, मेरे का। और साधन, साधन होते हुए भी उससे उपराम रहना। त्याग भोजन का, सिंपल। और किसका त्याग? भाषा और संबंध, वहां रहते हुए भी संबंधों में वो आसक्ति, वो लगाव, उनका त्याग। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिससे तीव्र गति से अगर उन्नति होनी है, वो है वैराग और अनासक्ति। अनासक्त भाव जहां पर नहीं है, आसक्त है परिवार में, व्यक्तियों में, संबंधों में। ब्रह्मा को अगर पूछा जाए कि, अगर देखा जाए कि एक फैक्टर जिससे तुरंत से उन्नति हो जाए अध्यात्म में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, वो है वैराग। बिना वैराग के बाकी सब कुछ करते रहो, चिंतन करो, मनन करो, मुरली सुनो, सुनाओ, योग करते रहो, जो करना है करो, परंतु यदि वैराग नहीं, अनासक्त भाव नहीं, आंख डूबती रहती है इधर उधर, कहां से लाया, एक्स्ट्रा है क्या? दो लेके आना चाहिए था। जहां आंखें डूबती रहती है बार 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 बार, वहां उन्नति नहीं हो सकती है। वैराग। तो त्याग, ब्रह्मा का, ब्रह्मा के त्याग की कहानी। और किसका त्याग? पब्लिक ओपिनियन, लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, और अभिमान, और वो कह दिया देह भान कहो, संबंध कहो, देह, देह भान, देह के संबंध, इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, नाम मान शान, ये सारी बातें हमें पता है, सूक्ष्म बातें हैं। तो ये सारी चीजें, और उन्होंने कुछ, उसने कुछ करने का प्रयत्न नहीं किया, स्वतः ही हो गया वो, क्योंकि जो मिला वो बहुत बड़ा था, सारा फोकस उसके ऊपर था क्या पाना है, तो जो छोड़ना है वो स्वतः ही छोड़ गया। छोड़ने, व्यक्ति क्या करता है, जो छोड़ना है उसी का चिंतन करते रहता है। यदि उसे कुछ छोड़ना है ना, अरे इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है, मैं उसी का चिंतन करते रहता हूँ, उसके मुझसे मुझे बात नहीं करनी है, उससे, सारा फोकस उधर ही है। पहले उसके ऊपर ध्यान था, उसका ही चिंतन था, क्योंकि लगाव जाता था। अभी उसका शीर्षासन कर रहा हूँ उल्टा अभी उसका उसको छोड़ना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है, पर है केंद्र वही, एक गृहस्थ एक सन्यासी है, केंद्र वही है बीच का। एक राग एक विराग, लक्ष्य है वितराग, ऊपर त्रिकोण के ऊपर है वितराग, बेहद का वैराग जिसे कहेंगे, एक तरफ राग और दूसरा तरफ सन्यासी, दोनों ही वही स्त्री का ही चिंतन कर रहे, एक है गृहस्थ जो स्त्री का चिंतन कर रहा है, एक है सन्यासी जो छोड़ गया है वो भी वही चिंतन कर रहा है, ध्यान वही है, इससे दूर जाना, इससे दूर जाना, इससे दूर जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, शक्कर नहीं खानी है परंतु वही दिखता है, मीठी चीजें बिल्कुल मुझे खानी नहीं है परंतु बार बार जहां देखो थाली में इतनी सारी चीजें, वो कुछ भी नहीं दिखा, बस वो मीठा दिखा जो नहीं खाना है, सारा फोकस सारा अटेंशन उसके ऊपर है, इससे कभी नहीं छूटती है चीजें, फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो चेंज करना है, जो हायर है उस तरफ ध्यान लगाओ को नीचे का सारा अपने आप गिर जाता है, छूट जाता है, ये एक सूक्ष्म फिलॉसफी है। त्याग फिर है तपश्चर्या, तपश्चर्या का इम्पैक्ट प्रभाव कहां दिखाई दे रहा है, मधुबन में, कि अज्ञानी भी आते हैं तो क्या लेकर जाते हैं यहां से, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अलौकिक शांति और प्रेम, और जो ज्ञानी आते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, सहज योग, सहज योगी बन जाते हैं। क्या है ऐसी इस भूमि में चिमन भाई जी, क्या है इस भूमि में जहां यहाँ के ही सहज योगी बन जाते हैं, स्नेह भरा है और क्या भरा है, तपस्या के वाइब्रेशंस भरे हुए हैं और क्या भरे हैं, रूहानी प्यार और तपस्या से संबंधित बताओ क्या भरा है, शक्तियां और कण-कण में वैराग भरा है, तपस्या भरी है, वैराग भरा है, अनासक्ति भरी है, साइलेंस का बल भरा है, यहां पर साधारण भूमि नहीं है, धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जहां जहां नाथ ने पैर रखे है भगवान के चरण कमल इस भूमि पर पड़े है, स्वयं भगवान ने पाव रखा है। आज सुबह अमृत वेले हमारे योग करते करते एक चित्र उभरा कि जब बाबा आते हैं तो भक्ति मार्ग में विराट का चित्र है, कृष्ण के साथ अर्जुन के सामने कृष्ण अपना विराट रूप धारण करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में बैठे हैं और वो जैसे विराट है, बाबा के पैर धरती पर है और सर परम धाम में, मतलब वो ऐसा एक विराट रूप खड़ा है जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है उस रूप में, मतलब उसकी उसका सिर ऊपर परम धाम में अर्थात वही स्थिति है परम धाम वाली अव्यक्त शांति, और पैर इधर धरती पर है, धरती पर आया है परंतु वो ऊपर खड़ा है, ऐसे वो पैर है केवल यहाँ पर। तो इस भूमि में बहुत तपस्या के वाइब्रेशंस है, कण कण कैसा वातावरण हो जाता है शांति स्तंभ पर, पूर्वी बहन कैसा वातावरण हो जाता है शाम को, परम धाम धरती पर उतर कर आता है, और कैसे हो जाता है नागेश भाई, सन्नाटा हो जाता है, गहन सन्नाटा और सुखदाई, डेड साइलेंस नहीं, स्टोनी साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, और क्या हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, वह शाम, ठंडी ठंडी हवाएं, वो झाड़, वो पंछियों की चहचहाट, वो सभी योगी, वो चारों ओर श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, कैसा वातावरण है, कैसा व्यक्त वातावरण तैयार हो जाता है, क्या ऐसा वातावरण और कहीं है क्या संसार में। तो इस मधुबन में वाइब्रेशन ब्रह्मा की तपस्या का फल है। छठवां पॉइंट सेवा, सेवा में भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया उसकी भिन्न भिन्न वैरायटीज। वास्तव में जहां तपस्या और त्याग है सेवा स्वतः ही है, करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, परंतु हाँ ये दो छोड़ के अगर सेवा के पीछे कोई लगा है तो न माया मिली न राम, कुछ नहीं हाथ में आएगा, सब गया। इसके लिए सेवा के लिए वो वैसा वाला उतावलापन नहीं चाहिए, सेवा होती रहेगी, अपने आप होगी। यदि तपस्या जीवन में धारण कर लिए, यदि त्याग से परिपूर्ण जीवन है। गीता का अर्थ किसी ने पूछा था किसी को, तो उसने कहा था गीता गीता शब्द बोलते रहो जोर 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 से। गीता का अर्थ त्याग, गीता 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 तागी तागी। तागी शब्द हिंदी में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने संपूर्ण परित्याग किया है, उसे तागी कहा जाता है। एक है त्यागी, एक है तागी। तो गीता का सारांश, गीता का अर्थ क्या है? त्याग। अगला पॉइंट है हमारा क्या कर्तव्य है, सातवां पॉइंट हमारा क्या कर्तव्य है, अभी इन वाइब्रेशंस को फैलाना है, स्प्रेड करना है संसार में, त्याग तपस्या और सेवा की वाइब्रेशन। तो यहाँ एक योग का प्रयोग किया जा सकता है, हम बाबा के पास गए और बाबा ने हमें त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन से भर दिया, हम नीचे आए और सारी पृथ्वी पर ये वाइब्रेशंस बिखेर रहे हैं, ये एक दूसरा योग का प्रयोग है। तीसरा बाबा ने, आगे बाबा ने कहा कि इसकी विधि क्या है, साइलेंस। वो साइंस क्रिएट कर सकता है परंतु उस साइंस का भी जन्मदाता साइलेंस है, तो साइलेंस से क्या करो, फैलाओ। और उसकी विधि है मन बुद्धि की एकाग्रता। जब तक एकाग्र नहीं होती है बुद्धि, मनसा सेवा नहीं की जा सकती है। मनसा सेवा को के लिए बहुत हाई लेवल की एकाग्रता चाहिए, सारे थॉट्स कॉन्सेंट्रेट हो जाए बिल्कुल एक जगह, ऐसा चित्त की अवस्था कि बस उसमें मैं आत्मा और मुझ में सारी शक्तियां और सारे ग्लोब को मैं दे रही हूं, ऐसी अवस्था चित्त की, कोई दूसरा संकल्प नहीं, देह का संकल्प नहीं, कुछ भी संकल्प नहीं, ऐसी एकाग्र चित्त अवस्था। वो दिखाते ना दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक बार जाते रहता है तो वहां से बारात जाती रहती है, परंतु एक बहेलिया, बहेलिया अर्थात एक शिकारी, तीर पर अपने चिड़िया पर तीर साधे हुए रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है वहां से बारात गई। वो कहता है कि तुम मेरे गुरु हो, सीखता है उससे, अपना गुरु बना देता है। बारात जा रही है परंतु वो इतना एकाग्र है कि उसे पता भी नहीं। वैसा ही दूसरा दिखा है वो किसी व्यक्ति से जो कि मछुआरा होता है, वो पकड़ते रहता है, जाल में फंसी है, उसको पूछता है फला फला जगह का रास्ता कहां से, उसका ध्यान ही नहीं उस मछुआरे का, और फिर बाद में जब पकड़ लेता है मच्छी को फिर पूछता है आपने कुछ कहा था, वो कहता है तुम मेरे गुरु हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसा ही दत्त चित्त जब हो जाए उस एक के ध्यान में, विभोर अवस्था, भाव विभोर की कोई और विचार ही नहीं, वैसी एकाग्रता की आवश्यकता है, तो मन बुद्धि की एकाग्रता। अगला पॉइंट, एक संकल्प और एक विशेष अटेंशन, एक दृढ़ संकल्प। कौन सा? दुखों की घटनाओं को परिवर्तन करना है। संसार में क्या है? दुख की घटनाएं है, पग पग पर दुख ही दुख है, हर घर में दुख है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, ऐसा शायद ही कोई घर है, जगह है जहां दुख नहीं है, इतने सारे दुख, दुखों का अंबार लगा है संसार में, पहाड़ गिर रहे हैं, गिरेंगे। तो हमें क्या करना है? वातावरण को परिवर्तन करना है। जैसे साइंस हलचल क्रिएट कर सकता है, तो तुम्हें क्या करना है? साइलेंस बल से, संकल्प के बल से और रहम भाव से वातावरण परिवर्तन करना, ये एक दूसरा योग का प्रयोग है जिसमें बाबा के पास जाए और तीन शक्तियां लेना है। एक रहम की शक्ति कहो या रहम का भाव लो, कहो साइलेंस बल को और संकल्प का बल, वो नीचे आना है फरिश्ता स्वरूप में और आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है, ये एक दूसरा अभ्यास। अगला है दुखों की घटनाओं से मुक्त किया, फिर है इष्टदेव, वो आत्माएं चिल्ला रही है हे इष्टदेव, उन्हें रिस्पॉन्ड करना है उनके दुखों से, वो जो भक्त आत्माएं, हम उनके इष्टदेव है, बिरादरी शाखाएं और परिवार, हमारी ही बिरादरी है, हमारी ही शाखा है और हमारा ही परिवार है ये सारा संसार, हम पूर्वज आत्माएं हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के हम बच्चे हैं, तो इनकी पुकार, उनकी चित्कार, उनकी गुहार सुनना है। और रिस्पॉन्ड करना है। अगला पॉइंट है एवर रेडी। ब्रह्मा बाप की शुभाश क्या है? एवर रेडी बनना, वहां तक तो ठीक है, पर आगे भी एक पॉइंट है, बनाना। वो कैसे बनना? तो ठीक है, वो तो बन जाएंगे, बनाना। चाबी की भी बात की थोड़ी, बनाना उसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ और अचानक का पाठ। ये तीन बातें हमेशा बाबा साथ में कहते, लंबे समय का पुरुषार्थ, अचानक और एवर रेडी। एवर रेडी अर्थात सदा तैयार, सदा आमादा, वो सदा तैयार की अवस्था की हम तैयार है, अभी हर चीज के लिए तैयार है। एक ब्रह्मा कुमार भाई था हम जिसके साथ रहते, तो जब हम रात में उसके साथ सोने गए तो वो अपने यही ड्रेस जो ब्रह्मा कुमार का बैच और वो पहन के ही सो रहा था। तो हमने उससे पूछा कि आप ड्रेस नहीं चेंज करते हो रात में? वो कहता है कि अगर रात में भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए तो बाबा ने कहा एवर रेडी रहने के लिए। तो क्यों मैं चेंज करूं? सदा तैयार, जाने के लिए तैयार बोला है, साथ में जाने के लिए तैयार, बाप के साथ जाने के लिए तैयार। क्या हम ऐसे तैयार है? अभी अभी बोले चलो, हम है तैयार, चलो चलो दिलदार चलो। क्या ऐसी हमारी अवस्था है कि दिलदार आकर कहे कि चलो तो हम तैयार है? Come on, claps my hand and come। इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कविता है, कम ऑन क्लैप्स माई हैंड एंड कम, द लॉर्ड कम्स एंड सेज कम ऑन क्लैप्स माई हैंड एंड कम, आ जाओ पकड़ो मेरा हाथ और चलो मेरे साथ। वो क्रिश्चियनिटी का है, जीसस क्राइस्ट कहता है कम ऑन कैरी माई क्रॉस एंड फॉलो मी, मेरा क्रॉस पहनो और फॉलो करो मुझे। क्या ऐसी तैयारी है? वो दिखाया है, बहुत अमीर आदमी जीसस क्राइस्ट के पास आता है कि हे प्रभु ओ लॉर्ड कैन आई फॉलो यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो जीसस क्राइस्ट कहता है उसके, गो एंड सेल ऑल दैट यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है वो सारा बेच के आ जाओ, जितना तुम्हारे धन संपत्ति है। वो क्या कहता है कि धन संपत्ति मुझे बेच देना पड़ेगा? ये तो मेरे से नहीं होगा। इट इज पॉसिबल फॉर एलिफेंट टू पास थ्रू, एलिफेंट और कैमल थ्रू पास थ्रू आई ऑफ अ नीडल देन अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। ऐसा कहा हुआ है उसमें कि मुश्किल है अमीरों का उस राज्य में आना। तो वो कहता है कि कम ऑन टेक अप माई क्रॉस एंड फॉलो मी, लो मेरा क्रॉस और मुझे फॉलो करो, क्लास माई हैंड एंड कम, पकड़ो मेरा हाथ और चलो, पूछो मत क्या क्यों कब कहां, कहां जा रहा हूं, किस ओर लेके जा रहा हूं मैं तुम्हें, ये भी नहीं पूछो। ऐसा विश्वास, बस पकड़ो एंड फॉलो मी, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलो इट मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस, मैं ही प्रकाश हूं संसार का, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, अहम आदिश्य मध्यश्य, हे अर्जुन सब कुछ मैं हूं, जो जो इस संसार में विराट और श्रेष्ठतर है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। तो ऐसी तैयारी की अवस्था। और लास्ट में पॉइंट कौन सा पॉइंट है? 12वां, नगाड़ा बजाओ। कौन सा नगाड़ा? आ गया आ गया आ गया, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ और डेट फिक्स करो, तारीख को निश्चित करो, सुनिश्चित करो, केवल निश्चित नहीं कि ये तारीख को हो जाएगा। तो यहां पर मुरली पूरी होती है, तो इस मुरली से अलग अलग अभ्यास जो लेने हैं, पहला अभ्यास तो जो कहा विल की शक्तियों की विल ले ली, एक। दूसरा दो बातें, यूनिटी, वो यूनिटी हम सब में हो, और तीसरा एक ने कहा दूसरे ने माना। अगला, क्या व्यक्त पालना का मैं पात्र हूं? इस पर चिंतन कर सकते हैं, क्या व्यक्त पालना का मैं पात्र हूं? फिर त्याग, तपस्या और सेवा, उसके बाद में एकाग्रता की शक्ति, साइलेंस पावर, रहम का भाव, संकल्प की शक्ति, ये सारी शक्तियों की चर्चा बाबा ने की है। ये सारी शक्ति आ गई है, फिर एवर रेडी, और फिर लास्ट में डेट फिक्स्ड और नगाड़ा बजाना। ऐसे ये भिन्न भिन्न मुरली में पॉइंट्स है। एक ही मुरली का, हम सोच रहे थे कल कि एक ही मुरली काफी है, एक अव्यक्त मुरली ही काफी है संपूर्ण बनने के लिए। इतनी सारी हम रोज मुरलियां सुनते परंतु एक ही काफी है संपूर्ण बनने के लिए। अच्छा, ओम शांति।